अब चलते हैं आयत नंबर 25 पे, आयत नंबर 25। अब दोबारा उसी मौजू पे वापस आ जाए, निकाह ही की बेसिक्स बताई जा रही है। वह मल्लम यस्तती मिनकुम तौलन, और जो कोई तुम में से इतनी सकत ना रखता हो, कितनी सकत, तौलन से मुराद कुदरत, या सकत मैंने आसानी के लिए बोल दिया, अयन के है कि वो निकाह कर ले, किससे निकाह कर ले, एक मर्द, बल्कि इस पे ऐसा कीजिए कि लिख लीजिए, मैं लिखाती हूँ, वह मल्लम यस्तति, और जो ना ताकत रखता हो, मिनकुम तुम में से, कुम के नीचे लिखिए आजाद मुसलमान मर्द, खानदानी या आजाद मुसलमान मर्द है, नहीं रखता तौलन कुदरत, तौल वही है जिसे जिद तौल, अल्लाह ताला का बड़ा प्यारा नाम है, सूरत मोमिन के अंदर शायद आता है जिद तौल, बड़ी कुदरत वाला, तूल वही लफ्ज है ये भी, ठीक है, किस बात की कुदरत, अय्यन के हल मुखसनातिल मोमिनात, कि जो कोई निकाह कर सके खानदानी आजाद औरत से, यानी कोई लड़का है बेचारा, हैंड टू माउथ है, शक्लो सूरत का भी वाजबी है, कोई रिश्ता देता ही नहीं उसको, आजाद घर की कोई लड़की उसके पास नहीं आ पाती, अब क्या करे, अब जरा गौर से सुनिएगा, बड़ा अहम इशू है इसके आगे, एक लड़का या मर्द व्हाटसोएवर, नो प्रॉब्लम, उसको आजाद घर का खानदानी घर का कोई मर्द अपनी बेटी या बहन नहीं देता, वजह क्या है कि उसके पास वो सारे रिसोर्सेस नहीं है जो उस लड़की या औरत को खुश रखे, अब क्या करे, जिना कर ले, मजबूर है जी, शादी नहीं होती, जाके ऐसे लिविंग टुगेदर बगैर शादी के रह ले, बॉय फ्रेंडशिप गर्ल फ्रेंडशिप, यहां मैं रोक के ये जुमले बोल रही हूँ कि आज जितने लोग गलत ताल्लुक इलीगल रखते हैं वो यही दलाइल देते हैं, बिकॉज वी आर अलोन, बिकॉज हमारी शादी नहीं हो रही, बिकॉज वी हैव टू, हम प्रदेश में यहाँ इतनी औरतें हैं, हम इन सब्र नहीं कर सकते, हमारे साथ पढ़ती हैं लड़कियां, हमें पहल करती हैं, कुछ भी है नहीं हो रही ना शादी, तो फमिम्मा मलकत ईमानकुम मिन फतयातिकुमुल मोमिनात, तो फिर उसमें से जो लौंडियां हैं किसी दूसरे की, अब ये जुमला यकीन करें मैं आपको सच कहती हूँ, मैं 2-3 दफा कुरान पढ़ चुकी थी, पढ़ाने की बात छोड़े, मुझे ये जुमला नहीं समझ आया हुआ था जो अल्लाह ने शरह सदर पिछले चंद सालों में किया, मैं कहती थी अपनी ही लौंडी से कौन कैसे निकाह करे, देखने में ऐसे ही लगता है ना, तुम्हारी लौंडियों में से निकाह कर ले, यानी अपनी लौंडी से निकाह कर ले, मैं कहती थी पीछे तो इतनी बहस की है कि जी लौंडी है उसके साथ निकाह की जरूरत नहीं, और जब लौंडी भी पास मौजूद है तो फिर निकाह की जरूरत क्या है, तो हालांकि इधर माँ मलकत ईमानुकुम से अपनी लौंडी नहीं है, दूसरे मुसलमान की लौंडी है, एक लड़का या मर्द जिसकी शादी नहीं हो रही, आजाद घर वाला खानदानी लोगों में से कोई रिश्ता नहीं दे रहा, तो वो किसी दूसरे मुसलमान के पास जाए और उसकी फतयातिकुमुल मोमिनात, ईमान वाली लौंडी से रिश्ता मांग ले, बात बात है, आप जाके किसी की लौंडी से खुद ही मोहब्बत भरा खत लिख दे, नहीं, उससे जाके कहे कि तुम अपनी लौंडी का निकाह मेरे से कर दो, वल्लाहु आलमु बीमानिकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमानों को खूब जानता है, क्या मतलब कि अल्लाह को पता है कि मुसलमान लड़के या मर्द तू कितना अपनी नजर को पाक रखना चाहता है, क्या अल्लाह घर की लड़की नहीं भी मिल रही फिर भी तू जिना और बदकारी पे नहीं जाता, बल्कि तू किसी की मासी की बेटी से शादी करने को तैयार है, आज की जुबान में आप कह रहे हैं किसी भी थर्ड ग्रेड के किसी मर्द की बेटी से शादी करने को तैयार है, तो अपना स्टैंडर्ड ऑफ रिश्ता लोअर कर रहा है, तो अल्लाह ताला तुझे जाया नहीं करेगा, और बाकी रह गई बात लौंडी या गुलाम, बादुकुम मिन बाद, तुम सब हो तो असल में एक ही, क्या मतलब, यू ऑल आर ह्यूमन, पहली आयत याद कर ले सूरत निसा की, या अय्युहन्नास, ए लोगो तुम कौन हो, जिसको पैदा किया अल्लाह ने, मिन नफ्सिन वाहिदा, तो असल में तुम सब हो, अब यहां बात क्लियर हुई, अब कैसे करें, सवाल पैदा होता है आजाद औरत का तो रिश्ते की बात खत्म हुई, अब आ गई किसी लौंडी के साथ निकाह करना, सोसाइटी है एक मर्द के पास 4 लौंडियां हैं, 2 हैं, वो उनको कहता नहीं मैंने इनसे ताल्लुक नहीं रखना, इसका कोई अच्छा रिश्ता मिला तो मैं शादी कर दूंगा, एक लड़का जाके कहता है मेरी कर दो, तो अब क्या करो, खुद ही नहीं कर सकते किसी की मासी से भी शादी, बल्कि फन के हु हुन्ना, नोट कीजिएगा इसमें बहुत सारे यानी फैक्टर्स होते हैं ग्रामर की रोशनी में, अगर आप देखें तो यहाँ फन के हु हुन्ना, तुम निकाह कर लो उन औरतों से, हुन्ना के नीचे लिखिए लौंडियां, किसी की लौंडी, कौन सी, मोमिना, काफिर लौंडी से निकाह नहीं कर सकता कोई मुसलमान, लेकिन ईमान वाली से करेगा, कैसे करो, बिइज़्नी अहलिहिन्ना, उनके मालिकों की इजाजत से, किसी लौंडी का मालिक जब तक खुद अपनी लौंडी की शादी दूसरे शख्स से नहीं कर देता, कोई खुद नहीं कर सकता। ये लफ्ज़ जो है ना बेजलिया लेना, इसके नीचे लंबा सैरो डाल के लिख लीजिए निकाह का चौथा बेसिक पिलर वली। बुखारी की रिवायत है, ला निकाह हुन इल्ला बी वली युन। निकाह नहीं होता सिवाय एक ही सूरत में कि वली हो। यहाँ से वली की थोड़ी सी हमें बात भी समझ आती है कि कोर्ट मैरिज, लव मैरिज वो जिसमें बाप के होते हुए बाप नहीं आ रहे, इस्लाम में अलाउड नहीं है। बाप की मौजूदगी लाजमी है, बाप नहीं है तो फिर भाई, भाई नहीं है तो फिर दूर के रिश्ते। और इसमें हुक्म के कि करीब के वली के होते हुए दूर के वली की बात नहीं चलती। मतलब लड़की का दिल ला गया किसी एक लड़के से शादी कर दें, बाप मान नहीं रहा, कहते नहीं मानते नासी मैं मामू को ले जाती हूँ, नहीं कर सकती। कोर्ट मैरिज इस्लाम में अलाउड नहीं। अगर ये शादी कर दी जाए तो ये जिना होगा और इसके नतीजे में जो औलाद पैदा होगी वो वलदुस जिना होगी। क्या करें फिर बाद में, रहने लग गए, कर ली गलती जिंदगी में, अब क्या करें? बाप को मनाएं कि अब तो मैं रह रही हूँ, अब क्या करो, मान जाओ, मान गए फिर जाओ दोबारा निकाह कराओ, उसी से फिर निकाह कराओ। और ऐसा वाकया हुआ, हमने बहुत करीब ये चीज़ देखी कि लड़की ने ज़बरदस्ती बाप की बजाय ऐसे ही किसी दूसरे मौलवी साहब को डाल के निकाह करा लिया। पता नहीं किस मौलवी ने कर भी दिया, बच्ची भी हो गई बाद में। फिर बाद में हमारे कल्चर में 2-4 साल बाद फिर माँ बाप कहते चलो मिल लो, मिल तो जाते हैं लेकिन फिर निकाह की दोबारा नौबत नहीं आती। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि करोगे किसी की लौंडी से शादी तो पहली शर्त विलायत, वली होगा। दूसरी वातू हुन्न उजूरहुन्न बिलमारूफ, और इनको भी इनके मेहर मारूफ तरीके से दो। दूसरी शर्त इधर भी आ गई, यानी इवन छोटे घर की लड़की या गरीब लड़की से भी शादी कर रहे हो तो फिर भी हक मेहर होगा। हाँ कम होगा, बड़े वाले तो ज्यादा मांग रहे थे, ये थोड़े पे राजी है, ये गरीब थोड़ा देता है। तीसरी शर्त मुहसनातिन गैर मुसाफिहात, इनको हिसारे निकाह में लाकर ना कि आजाद शहवत रानी करने वाली हों। वही सारी शर्तें जो उधर थी वो इधर लॉन्डी के निकाह में भी रिपीट हो रही हैं, समझ गए? वरना पढ़ते हुए अपेरेंटली इस रुकू को लगता है कि ये दो दफ़ा एक एक बात क्यों की जा रही है। तो पहले आज़ाद औरत के साथ हम पढ़ चुके, अब किसी की लॉन्डी के साथ करने की सूरत में वो सारी शरायत है। और इंशाल्लाह सूरत मायदा में हम पढ़ेंगे अहले किताब औरत के साथ भी जब कोई निकाह करेगा ये सारी शरायत उसमें भी आएंगी। कहीं कोई लूप होल्स है ही नहीं हमारी सोसाइटी में, ये तो बस जो लोग लगे हुए अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने वो अपनी मर्जी से शरीयत की वो कहते हैं ना मोम की नाक बनाकर इधर से उधर मोड़ लेते हैं। तो कहा कि इनको भी हक मेहर दो। तीसरी शर्त मुहसनात इन गैर मुसाफिहात, और इनको हिसारे निकाह में लाकर ना कि आज़ाद शहवत रानी करने वाली हों। यानी किसी की लॉन्डी से भी ताल्लुक कायम करना है तो क्राइटेरियन वही है कि करप्ट ना हो, ना तो उसके साथ ताल्लुक में और ना वो पीछे बुरी हो, बल्कि वला मुत्तखिज़ाती अखदान, और ना ही चोरी छुपे दोस्तियां करने वालियां हों। अल्लाह अकबर, एक एक चीज़ के ऊपर आप हैरान होंगे। अल्लाह ताला ने खोल के बयान कर दी। दो तरह से इस आयत को आप समझ लीजिए कि किसी की लॉन्डी से भी निकाह कर रहे हो तो सारी वही शरायत हैं जो आज़ाद औरत के साथ है, ठीक है। और दूसरा इधर एक लड़की को पसंद कर रहे हो रिश्ते के लिए, क्राइटेरियन क्या है कि वो औरत लड़की बदकार ना हो, उसके लड़कों से ताल्लुकात ना हो और चोरी छुपे दोस्तियां ना करें। इसको आप और मैं क्या कहते हैं आज के दौर में, ये है लिविंग टुगेदर, बॉय फ्रेंडशिप, गर्ल फ्रेंडशिप। देखिए लौंडियां उस दौर में ये हरकतें करती थी, जैसे कभी आप सुनते हैं ना, चूंकि तालीम नहीं होती, ऊपर से गुर्बत है बेचारे हला, तो बार दफा घरों की मासियां लड़कियां उनकी इस तरह की चिचोरी हरकतें करती हमने सुनी है बचपन से, देखते आए फलां की मासी ऐसी। और गांव में रहते हैं जो लोग उनको हलाल हराम का पता भी नहीं होता, बस जब अपने मर्द कहीं होते हैं तो घर के दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात होते हैं अनपढ़ लोगों में। बिल्कुल इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर कहीं लड़के और लड़की के शादी से बगैर ताल्लुकात थे ना, तो ये सिर्फ गुलामों और लौंडियों में होते थे छिछोरे लोग। ख़ानदानी और शरीफ लोग आप जैसे हमारे जैसे जैसे जिनको सोसाइटी में एक इज्जत हासिल है, इधर इसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। हज़रत उमर ने एक दफ़ा एक लौंडी को पूरी चादर नकाब में अपने आप को छुपाए हुए देखा तो कहने लगे तू क्या हमारी आज़ाद औरतों की रीस करती है। यानी उस वक्त अपना मुंह खुला छोड़ के फिरने वाली सिर्फ लौंडियाँ होती थी, पहनती ओढ़ती सजती संवरती लोगों को दावत नज़ारा देती, वो लौंडियाँ होती थी। आज़ाद औरतें तो बड़ी ख़ानदानी होती थी, छुपी छुपाई ढकी छुपी गठली की गठलियां होती थी। ये तो हमने भी आज से 40-50 साल पीछे की फिल्मों में देखा ही है ना, हमारे अपने बरसगीर पाक को हिंद में औरतों को किया डोलियों में डाल के इधर से उधर लेके जाते थे, घर में पता भी नहीं होता था औरत नाम की कोई चीज है, क्योंकि घर में इतने मर्दान खाना अलग जनान खाना अलग। आज भी ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब यहाँ बात करते सकते हैं आप लोग के लड़की लड़के के शादी से पहले के ताल्लुकात की क्या हैसियत है। इस्लाम लौंडी को नहीं इजाजत दे रहा, तो आप बताइए कि मेरे और आपको देंगे? अच्छा आप कहेंगे यहाँ तो देखे चोरी छुपे दोस्ती की बात है, आजकल तो हम बड़े लिबरल हैं, चोरी छुपे तो करते ही नहीं। पता है मेरी अम्मा को मैं फलां लड़के से मिलती हूँ और मेरे फलां को पता है, तो क्या ये खत्म हो गया इसका शिशु? इससे मुराद इलीगल ताल्लुकात है, चाहे वो किसी को पता चले ना चले, और छुपते कभी नहीं है, ये बल्ब जल रहा है ना ये नहीं छुपेगा। आप यहाँ से पुदीने की गठी ले जाए नीचे, नहीं छुपेगी, खुशबू फैल जाती है, अच्छी भी फैलती है बुरी भी फैलती है। आप किसी को एडमायर करें कि ना करें उसकी खूबी खुद ही सामने आ जाएगी, और इसी तरह ऑपोजिट भी है। तो इस्लाम में इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है, किसी की लौंडी से किसी का निकाह हो तो खुल्लम खुल्ला हो, यहाँ ये भी मुराद है कि अब लौंडी से भी जाके चुपके से निकाह नहीं करोगे, ऐलान करो अनाउंस करो फुलां की लौंडी या फुलां के निकाह में, पूरा पब्लिसाइज किया जाता था इसको। आज भी निकाह के काम में ऐलानु ऐलान करो, ये जो दफ बचता है निकाह के मौके पे उसकी यही हैसियत है कि ऐलान हो जाए कि ये लड़का लड़की अब मैरिड है, ताकि कल अगर कोई इनको किसी जगह आता जाता देखे तो उंगलियां ना उठाए कि ये लड़का लड़की क्यों बैठे हैं। हजरत सुमैया से हजरत यासिर ने निकाह किया था। हजरत सुमैया कौन थी? अबू जहल के चचा की लौंडी थी, एक शरीफ इंसान था। हजरत यासिर रजी अल्लाह अन्हो जब मुसलमान हुए और यमन से आकर मक्का में बात हुए, तो उन्होंने अबू जहल के चचा से जाकर इजाजत ली और उनकी लौंडी सुमैया से शादी की, और इनसे फिर हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हो पैदा हुए। तीन लोग थे, अम्मार और सुमैया माँ बनी बाद में, और बेटा यासिर था। तीनों अबू जाहल के कंस्टडी में आ गए, और जब इस्लाम आया तो बहुत सजाएं देता था अबू जाहल इनको। यासिर अम्मार बिन यासिर और अम्मार की माँ बीबी सुमैया, जब अबू जाहल का वो चचा जो बड़ा शरीफ था फौत हुआ, तो अबू जाहल ने इनको अपनी कंस्टडी में लिया और बदतरीन किस्म की सजाएं दी, हत्ता कि हजरत सुमैया को इसने शहीद करवा दिया। तो यहाँ देखिए कि ये सारी चीजें मौजूद है। अल्लाह ताला ने हजरत सुमैया को पहली शहीदा होने का फख्र दिया, ये भी अल्लाह ताला की शान है कि जो लोग आजमाइशों और तकलीफों में सामने आते हैं फिर उनको अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बाद में इज्जत भी देता है, यानी इनके नाम के साथ आज भी ये लफ्ज आ जाता है कि पहली शहीदा थी ये इस्लाम में, और वो हजरत सुमैया थी। अब लौंडी के निकाह की बात आगे चलती है। फइजा उहसिन्न फइन अतैन बिफाहिशतिन, अब लौंडी से निकाह हो गया, शरायत सारी वही थी जो होती थी, लेकिन अब लौंडी अगर बद किरदार थी और उसने शादीशुदा होने के बावजूद बेहयाई का कोई काम कर लिया, तो अब क्या होगा? फअलैहिन्न निस्फु मा अलल मुहसनाति मिनल अजाब, तो इन पर उस सजा की बनिस्बत आधी सजा है जो आजाद औरतों के लिए है। ये क्या बात आ गई बीच में? शादी हो गई, इस्लाम ने जिना को हराम किया, शादीशुदा करे या अनमैरिड करे दोनों की सजा में फर्क है, सूरत नूर में डिटेल्स आएंगी, लेकिन यहाँ सिर्फ अपना समझ लीजिए। कमारा लड़का या लड़की जिना करते हैं तो 100 कोड़े और 1 साल की जिलावतनी की सजा आती है, दोनों में से जो भी जिस तरह के हालात होंगे। शादीशुदा मर्द औरत जिना करे तो क्या सजा है? स्टोनिंग टू डेथ, यानी रजम करना। अब सवाल पैदा होता है कि किसी की लौंडी से शादी की थी और वो लौंडी बदकारी करे, तो फिर उस सूरत में 50 कोड़ों की सजा है, यहाँ ये मुराद है। फअलैहिन्न से मुराद किसी की वो बीवी जो किसी दूसरे की लौंडी है। निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब से मुराद है शादीशुदा जानिया की सजा, और निस्फ़ से मुराद 50 है। अब आप देखिए कि 100 कोड़ों के तो 50 हो गए, तो किसी को डेथ देते हैं जो रजम करते हैं, उसकी क्या फिर सजा होगी? बात समझ गए? यानी स्टोनिंग टू डेथ में ये होता है कि पत्थर इतने मारे जाएं इतने मारे जाएं कि वो बंदा पत्थरों ही में उसकी कब्र बन जाती है, मिसाल है। लौंडी की सूरत में अगर किसी को आधी सजा दें तो क्या इससे ये मुराद है कि उसकी आधी जान निकाल दो? नहीं, 50 कोड़े की सजा, दैट्स इट, ये अल्लाह का हुक्म है। इससे बाज लोग जिसमें शिया हजरात है वो रजम की सजा को ही नहीं मानते, क्यों? वो कहते हैं कि लौंडी को आधी दे नहीं सकते तो पूरी भी नहीं लेनी, डज इट मेक एनी सेंस? यहां से आप सिर्फ ये देखा करें कि यही कुरान है जिससे लोग एक दूसरे को यानी इधर से उधर बहका देते हैं, और यहां से आप देखिए कि जिना और बदकारी कितना बुरा है कि लौंडी भी किसी की अगर ऐसा गलत काम करेगी तो उसकी भी पकड़ है। अब यहां बात खत्म। बात कहां से शुरू हुई थी? आयत 25 की, वमल्लम यस्तती मिनकुम तौलन, कोई जो तो कुदरत नहीं रखता एक आजाद औरत से निकाह करने की तो वो क्या कर ले? आप सब बोले किसी की लौंडी से शादी कर ले। अब ये किसी दूसरे की लौंडी से शादी करना जालिका है, यहाँ आयत क्या है? जालिका, ये क्या किसी की लौंडी से शादी करना, लीमन, सिर्फ उस शख्स के लिए है। ये लीमन के नीचे लिखिए जो मजबूर है कि मैं शादी जरूर करूं, दूसरा नहीं दे रहा मुझे तो मैं किसी की लौंडी से करूं। कौन सा मर्द? खशीजल अनत अमिनकुम, जिसको अपने गुनाह में पड़ने का खतरा हो, यानी पसंदीदा नहीं है कि किसी की लौंडी के साथ कोई दूसरा निकाह करे, क्योंकि उसमें कई फिर आगे मसले शुरू हो जाएंगे ना। लौंडी है, उसके पैदा होने वाले बच्चों का क्या होगा, क्या वो अपने इस शौहर के बच्चे होंगे या उस आका के हैं, क्या किस तरह से मामला है। यहां से आप देखिए कि अल्लाह ने एक औरत को दो की गुलामी में नहीं दिया, यानी समझिएगा लौंडी होने के नाते भी एक उस पर रोक डाल सकता है ना, जिसकी वो लौंडी है शरण उसका हक है, काम करवा सकता है, खिदमत करा सकता है, उसको कोई मेहनत पे डाल सकता है। अब उसकी शादी हो गई, जिससे शादी हुई वो एक पूरा शौहर है, अब वो शौहर के तकाजे कुछ और है, तो वो एक लौंडी दो मर्दों की गुलामी में आ गई ना, तो अल्लाह कहते हैं इट्स नॉट गुड। ये सिर्फ एक रुख्सत है, लीस्ट थिंग है, सिर्फ उस शख्स को, किसी मर्द को या लड़के को जब ये खतरा पड़ गया है कि कोई औरत मिल ही नहीं रही शादी के लिए, और अगर लौंडी से भी शादी ना हुई तो मैं तो बदकारी में पड़ जाऊंगा, सिर्फ वो लौंडी से शादी करे, वरना वन तस्बिरु खैरुल्लकुम, और वो लड़को और मर्दो तुम सबर ही कर लो तो तुम्हारे हक में ये बेहतर है। यानी सबर करो, सेल्फ कंट्रोल, नफ्स पे बोझ डालो। उस दौर की जो लौंडियां थी वो बुलंद किरदार नहीं थी, और हुक्म यह है कि बीवी जो ढूंढो उसका किरदार बड़ा बुलंद हो, क्योंकि आगे देखिए ना कि फिर बच्चे भी तो होने हैं, फिर वो माँ ही अगर एक गलत सोच वाली होगी तो बच्चों की तरबियत कहाँ करेगी। तो यहाँ सबर से क्या मुराद है, इसकी तफसीर हमें हदीस में मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जवान लड़कों के पास से गुजरे और कहा, या माशर शबाब, ओ जवानों के गिरोह, जैसे अब यहाँ बैठे मैं आपको कह दूं, ओ यूथ, ओ जवान गिरोह, तुम में से जिसकी ताकत है शादी की वो शादी कर ले, और लड़की है तो उसका मतलब ये कि करवा दे या उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन अगर तुम ये ना कर सको तो फिर तुम रोजे रखो, क्योंकि रोजा निगाहों को झुकाता है। यानी ऐसी लड़कियां और लड़के जिनकी किसी भी वजह से शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं आता, या माँ बाप का मेयार बड़ा ऊंचा है, या सुन जितने भी मसाइल हैं, उन सब का फिर इलाज क्या है? वन तस्वीरू खैरुल्लकुम, सेल्फ कंट्रोल करो, मत देखो गंदी चीजें जिससे इश्तेहा पड़े, मत शादीशुदा दोस्तों के साथ रहो, मत सहेलियों से उनके शौहरों की बातें और कहानियां सुनो। यहां से देखिए इस्लाम कैसे सद्दे जराए करता है, फिर भी इजाजत नहीं दी कि चलो लिविंग टुगेदर कर लो, कहाँ जायज है। आप देखिए ये वही पीछे से कंटिन्यूशन है ना, वला मुत्तखिजाती अखदान, कि एक लड़की का एक लड़के के साथ इलीगल ताल्लुक, देयर इज नो वे टू एक्सेप्ट इट, कोई भी सूरत हो। अच्छा, अब सारी चीजों में फिर अगर आप बीच में फिर उस इशू को थोड़ा सा समझ लें कि जहां वैसे किसी के साथ ताल्लुक की इजाजत नहीं, शादी के बाद तो है, तो क्या शादी और वैसे के बीच में एक रिश्ता जिसको मंगेतर कहते हैं उससे भी ताल्लुक हो सकता है कि नहीं? क्या शौहर के साथ तो बातें कर लेनी चाहिए ना, इस किस्म की घंटों कर लेनी चाहिए ना, किसको पता है कि वो शौहर बनेगा कि नहीं। आप देखिए कि ये हमारे आज मुसलमान पेरेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए इस पे बात करना इस लाजमी ज़रूरत है कि आज पेरेंट्स ने भी इस हक को तस्लीम कर लिया। कोई लड़का स्कूल में या कॉलेज में या यूनी में पढ़ता है साथ, तो सात बातें उठेंगी अगर बच्ची ने कुछ किया, माँ बाप कहेंगे कि तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे, ये कर देंगे, मार देंगे, भाई कुछ कहेंगे। लेकिन जब लड़की अपने मंगेतरों से बातें कर रही होती है, माँ को भी बताता है, बाप को भी बताता है, और घंटों की कॉल्स में कितनी दफा नहीं वो लस्ट की बात करते होंगे, क्योंकि हाल चाल तो आप कितनी देर में पूछ सकते हैं। आप अपने भाइयों पे बताइए, आपकी लास्ट टाइम अपने भाई से कब बात हुई? मेरा ख्याल है 2-3 मिनट के बाद समझ ही नहीं आता बात क्या करें। हो सकता है भाभी से बात हो तो 4 और बातें हो जाए, कुछ कपड़ों की आप पूछ लें, मौसम की पूछ लें, खानदान की। भाई से आप क्या पूछेंगे, क्या हाल है, कैसे, सब ठीक है? अब आप पूछे नमाज पढ़ी थी, वो कहेंगे अच्छा मुझे जाना है, खुदा हाफिज। और आप उसे पूछे सुनाओ कितनी इनकम हुई, कारोबार कैसा जा रहा है, वो कहेगा ये मेरे राज ले रही है, खुदा हाफिज। कितनी को बातें आप और मैं कर सकते हैं, कभी सोचे इंसान। और हदीस बुखारी की है, सच्ची हदीस है, क्योंकि उसकी सनद में कोई जौफ नहीं है, कि आंखें भी जिना करती हैं, कदम भी जिना करते हैं, जुबान भी करती है, दिल भी तमन्नाएं करता है, ये सारे वो मदारेज हैं जिसको कुरुबात जिना कहा गया। शहवत की बातें, जुबान का जिना, सुननी ऐसी बातें कानों का जिना, चल के डेटिंग के लिए जाना कदमों का जिना, फिर कहीं आखिर में शर्म का या तस्दीक करती है या तकजीब करती है, यानी असल फेल होता है कि नहीं होता, ये बात की बात है। लेकिन कौन से लोग हैं जो इन चीज़ों को करार देते हैं? अब उसका जिक्र आयत नंबर 26 से 28 है, हम इनको इकट्ठा करेंगे, और यही हमारे आज के सबक का आखिरी टॉपिक है, मौजू पूरा हुआ। आगे फरमा युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम, अल्लाह ताला इरादा करता है कि वो तुम्हारे लिए बयान कर दे, यानी खोल के हर बात को रख दे। तुम्हें अल्लाह ताला ने बीच में नहीं लटकाया, न 3 में न 13 में। सलमान तो हो पता नहीं शादी कैसे करनी है, ये नहीं पता कि तलाक की सूरत में क्या करना, ये नहीं दिया। क्लियर कट मैनिफेस्ट ट्रुथ बना के दीन तुम्हें दिया, अल्लाह ने बयान कर दी। अल्लाह के नबी सल्लम की एक हदीस का खुलासा है कि लोगो मैं तुम्हें एक ऐसे दीन पे छोड़ के जा रहा हूं कि लैलुहा का नहारीहा, जिसकी रातें भी उसकी सुबह की तरह रोशन है, यानी दीन की हर बात क्लियर है। बाद लोग कहते हैं ना ये बातें नबी सल्लम के दौर में नहीं क्लियर हुई, बाद में आयमा कराम ने क्लियर की, तो ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अल्लाह के नबी नक्स वाली शरीयत छोड़ के गए थे, ये तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इसी तरह एक सहाबी कहते हैं कि हमारे सामने से अगर कोई परिंदा भी उड़ता हुआ गुजरता तो हम तुम्हें पूरे यकीन से कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमें उसके बारे में भी बताया। यानी अल्लाह के नबी लोगों को सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं सिखाते थे, ज़िंदगी गुजारना भी सिखाते थे, पहन ओढ़ना भी सिखाते थे, शादी भी सिखाते थे, घरदारी भी सिखाते थे, जो भी किसी की ज़रूरत होती है। तो कहा युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम, अल्लाह तुम्हें क्लियर सिखाना चाहता है। वयहदियकुम, दूसरा अल्लाह का फैसला क्या है कि वो तुम्हें रास्ता दिखाए, गाइड करे। ही वॉन्ट टू गाइड यू, क्योंकि वो अल-हादी है, और तुम दिन रात उससे दुआएं मांगते हो कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम। क्या दिखाना चाहता है? सुनन अल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, तरीके उन लोगों के जो तुमसे पहले गुजरे। यानी अल्लाह ताला तुम्हें पहले लोगों के तरीके सिखाना चाहता है। अब यहाँ पहले लोगों से मुराद कौन है? जो शुरू से दुनिया में आए और आके चले गए, पहले अंबिया कराम भी थे, पहले लोगों में कुछ नेक लोग थे, कुछ बदकार थे। अल्लाह ताला हमें क्लियर कट बताता है कि देखो क्या काम करोगे तो अच्छे रहोगे, क्या करोगे तो बुरे। ये बिल्कुल वही बात है जो सिरात अल्लज़ीन अनमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पे तूने इनाम किए, किन रास्तों पे चलने वाले कामयाब होते हैं, इसको तजुर्बा कहते हैं। देखिए कि हर बच्चा खुद बाप बन के सीखना चाहता है, वो सारी वो गलतियां दोहराना चाहता है जो उसके बड़ों ने दोहराई। लेकिन बाप की ख्वाहिश क्या होती है कि तुम वो काम ना करो जो मैं करके धक्के खा के सीख चुका हूँ। यही हाल माँ बेटी का होता है। एक सच्चे दाई दीन का भी यही नुक्ता नजर होता है। एक उस्ताद कह लीजिए, कोई मुरब्बी कह लीजिए, मुज़क्की कह लीजिए, उसकी भरपूर ख्वाहिश ये होती है कि तालिब इल्म और स्टूडेंट्स वो गलतियां ना करें जिन गलतियों से वो खुद सीख चुका। इसीलिए जब भी कुरान पाक में पिछले लोगों का जिक्र आता है तो साथ ही साथ हिदायत का जिक्र आता है। जैसे यहाँ इसके बरक्स आज के दौर में एक सोच क्या आम की गई, बुजुर्गों का बल्लू पकड़ लो, उनके तुफैल मांग लो, उनसे दुआएं मांग लो, कह सकते हैं ना। कितनी मिसालें अभी तक कुरान में हमने इसकी पढ़ ली। हजरत जकरिया की याद आ रही है, वही दे देती हूँ, करीब में पढ़ी हुई है। बीबी मरियम के पास बिन मौसम के फल देखे तो क्या कहा, मुझे भी कोई वजीफा बता, तू कैसे पहुंची हुई हो गई, तेरे पास फल कैसे आए? नहीं, इस नादा रब्बहु, जकरिया सूरत मरियम में पुकारते हुए देखते, अल्लाह तू मरियम को देख सकता है, मैं भी दे दे। तो हिदायत अल्लाह से मांगे, बंदों को बीच में से निकाल दें। जो बंदों को बीच में ले आते हैं वो हिदायत से महरूम हो जाते हैं। याद रखिए आज उम्मत मुस्लिमा के पास कुरान भी है, हदीस भी है, मस्जिदें भी हैं, मदरसे भी हैं, हिदायत की कमी क्यों दिखती है? शख्सियात में खो गए, लोगों में पड़ गए। अल्लाह कहता है कि ऐसे लोगों को उन रस्तों को देखना चाहिए जिन रस्तों पे चल के कोई बड़ा बना, जिन रस्तों पे चल के किसी को कामयाबी हुई। आज हम मुसलमान देखे तो दो एंगल से इसको समझ लें। दीन के कामों में जाके देखिए, जरा पूछिए, फोन करके खत लिख के पूछिए इमाम काबा की माँ को कैसे तरबियत की थी कि ये बच्चा काबा का इमाम बन गया, पूछिए। सुनन वो रास्ते ढूंढिए, अब्दुल्ला बिन अब्बास की माँ को पूछिए, सुनाओ इस बच्चे को इन सिखाने में क्या मेहनत की, ये तो बात बनी। हम कहते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास के सदके में अल्लाह हमें माफ कर दे, बात समझ रहे ना। दुनिया के लोग तरक्की कर रहे हैं ना, जापान तरक्की कर रहा है, चाइना तरक्की कर रहा है, दूसरे मुल्क कर रहे हैं, जाके 100 दफा पूछिए उनसे कि भाई सुनाओ तुम अपने मुल्कों में क्या करते हो। मैंने पढ़ा कि जापान में बच्चों को दोनों हाथों से लिखना सिखाते हैं, उनको जूते नहीं पहनने देते। चाइना में एक पूरा फिगर मैंने पढ़ के एक आज की बात में भी सुनाया था कि शुरू से बच्चों को इतना मेहनती कर देते हैं। और कल कोई सुना रहा था कि जापान में लोग बिस्तर पे नहीं सोते, वो रस्तों में जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके ट्रेनों में जाते, वो कहते हैं हम इसी में नींद पूरी कर लेते हैं। वह मकसद कौन है, वो दो हाथों से लिखना क्यों सिखाते हैं, कि एक हाथ से लिख रहे हो तो दूसरा खाली क्यों है, जूते नहीं पहनने देते, कहीं कुछ नहीं करते, तो जिंदा कौमें तो काम करती हैं। तो दुनिया की तरक्की है या आखिरत की तरक्की है, ये देखिए कि दूसरा बंदा कामयाब कैसे हुआ। आप उन कामों पे चलें, आप भी कामयाब होंगे। रहेगी बात जो पिछली जिंदगी जाया कर दी तो वयतुब अलैकुम, और वो तुम पर नजरे इनायत फरमाए, तुम्हें माफ कर दे, गिल्ट में ना जाया करो। लोगों को देख के कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हुआ करो कि उनके बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरे नहीं अच्छे, फुलां क्या क्या बन गया, मैं क्यों नहीं बनी। कभी भी ऐसा ना करें। अपने साथियों के साथ तो खुद को कंपेयर करें, अपने उस्तादों के साथ कभी कंपेयर ना करें, वरना याद रखिए खो जाएंगे। कितने लोग हैं हिदायत के सफर पे चलते चलते मुड़ जाते हैं, जंप करके बैठ जाते हैं, वजह क्या, किसी बात में उस्ताद पे खो गए, छोड़ दिया, और नतीजा क्या निकला, बात बदल गई। जब तक पैगाम पे नजर रहेगी ना, हिदायत मेरे और आपके कदमों को चूमेगी। गाइडेंस इज अ गिफ्ट, अल्लाह गिफ्ट उसको देता है जो गाइडेंस को पाना चाहता है। और जो पोस्टमैन यानी गाइड में खो गया कि वो DHL लेके आया, फुला लेकर आ गया, खो जाएंगे। इनका तذکرہ अगली आयत में आएगा, वल्लाहु अलीमुन हकीम कहने के बाद कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। यहां से आपको देखिए कि आयत में इस्लामी शरीयत का एक बुनियादी नुक्ता भी समझा दिया गया। अल्लाह सुब्हान तआला ने ये 3 आयतों में, 26, 27 और 28, इन 3 आयतों में शरीयत के अहकामात की हिकमत सिखा दी। शरीयत के अहकामात जो है ना, वो इंसान को अपने ऊपर बोझ महसूस होते हैं, बोझ लगता है, हाय ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ये नहीं कर सकते, 5 नमाजें ये है वो है। तो इसे जब हुक्म दिया जाता है कि ये काम करो ये मत करो, तो इंसान बोझ महसूस करता है। नतीजा क्या हुआ, क्रिश्चियंस को जब शरीयत मिली, उन्होंने क्या किया, शरीयत का तौक अपने गले से उतार के फेंक दिया। आपको पता है कि क्रिश्चियंस अपने लोगों को क्या कहते हैं, ये किसी का एक्सपीरियंस है कि 1970 में क्रिसमस के मौके पर ये लंदन में थे, कहते हैं कि मैंने एक क्रिश्चियन स्कॉलर की स्पीच सुनी जिसमें वो ये कह रहा था, कहने लगा कि शरीयत लानत है, नऊज़ु बिल्लाह। खामखा एक इंसान को ये एहसास दिलाया जाता है कि ये हलाल है, ये हराम है, फिर जब वो हराम से रुक नहीं सकता तो इसका दिल मैला हो जाता है, फिर वो अपने आप को खताकार समझता है, फिर मुजरम जमीर यानी गिल्टी कॉन्शियस फील करता है, तो वो मनफी नफ्सियात का शिकार हुआ, नेगेटिविटी का हुआ, नतीजा क्या हुआ कि वो मुतनफ़िर हो गया। तो लिहाजा शरीयत और दीन की बात ही ना करो, हराम और हलाल की बात नहीं, जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो करो। सुनिए, मैंने कई गोरों के मुंह से ये बात अपने सफर के दौरान बातों में सुनी है कि नो नो, वी डोंट बिलीव इन रिलीजन। क्यों? क्योंकि रिलीजन जो है वो फाइट कराता है, ये झगड़ा कराता है। ये बात है इधर कैसे, अब आगे देखिएगा। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं 27 में, व युरीदुल्लाहु यतूब अलैकुम, और अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि तुम पर अपनी रहमत के साथ तवज्जो फरमाए। जो कवानीन, जो असूल तरीके तुम्हें दे रहा है वो रहमत वाले हैं, उसकी रहमत है इसमें कि एक बाप के घर से बेटी लेके जाओ ताकि कल किसी अभी नबी की सूरत में कोई पूछने वाला तो हो। तुम कहते हो किसी की लड़की चुरा के ले जाऊं, इसमें हिकमत नहीं है, अल्लाह की तो हिकमत है। हाँ, व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊना शहवात, और वो लोग जो शहवात की पैरवी करते हैं वो क्या चाहते हैं, अन तमीलू मैलन अज़ीमा, कि तुम तो राहे हक से भटक कर दूर निकल जाओ। आज लोग निकले हुए कहते हैं ये ड्रिंक बी मैरी, गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स। ख्वाहिश परस्त लोग क्या चाहते हैं कि उन पे कोई रोक ना हो, कोई टोक ना। आप किसी अपने बच्चे से पूछिए, 5-6 साल से, जरा शऊर होता है ना शुरू, उस साल के किसी अपने बच्चे से पूछिए, बेटा तुम्हारा क्या दिल करता है, मैं मैं तुम्हें रोकूं किसी बात पे? कहेगा नो मम्मी। मैं आपको कुछ पहनने से रोकूं? नो मम्मी। कुछ खाने से रोकूं? नो मम्मी। ये कहेंगे ना बच्चे, ये तो बचपन है, मासूमियत में ऐसा होता है, छोटे बच्चे को कभी नहीं अच्छा लगता। आप देखिए बच्चे को माँ नहलाती है तो बच्चा भागता है, माँ उसके नाखून काटती है तो वो भागता है, माँ सुलाती है तो वो बिस्तर गोद में से निकल निकल के भागता है। हाँ, लेकिन जब बड़ा बंदा ये काम कर ले कि यत तबियो न शहवाती अंत मीलू महिला नजीमा, तो ये तो बचपना होगा ना। अल्लाह कहते हैं कि मैं तुम पे बोझ नहीं डालना चाहता। शहवत और ख्वाहिश, ये है वो चीज जो आज के दौर का सबसे बड़ा ताबूत है। आज जितनी भी बातें हमने की शादी के और निकाह के और ताल्लुकात के ज़िमन में, आप नोट करके देख लीजिए, ख्वाहिश परस्त लोगों के कवानीन है शादी नहीं चाहिए। होमोसेक्सुअलिटी किसका दीन है? लेस्बियंस कौन है? ख्वाहिश परस्त। जियो तुम जैसा चाहो जियो, व्हाट आई वांट इट्स माय वे इट्स माय स्टाइल। आपका बच्चा जिस दिन ये बोले ना कि ये मेरी मर्जी, तो जोर से एक थप्पड़ जरूर मार दें, अगर आप पाकिस्तान में हैं या इधर तो नहीं मार सकते आप, यकीन करें। जिस दिन ये मर्जी उठने लगे ना, आप उसको थप करके बिठा दें कि तुम कौन हो। ये शुरू से जो मैं आ जाती है ना बच्चों में, ये बाद में महिला नसीमा बन जाती है। ये हम खुद पेम्पर करते हैं, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, किधर है। और एक बच्चा जरा सी ज्यादती करके दूसरे के आगे कुछ करे तो माँ कहती है अच्छा बेटा तुम छोड़ दो, ये नहीं मानेगा। उसके नफ्स को इतना मोटा कर देते हैं कि मेरे से देखो माँ भी डरती है, बहन भी डरती है, भाई भी डरते हैं। शुरू से इसको दबाएं। इसके ऊपर ये अभी सीडी जो बनी है आप लोग सुनिएगा, कल आपको भी मिली होंगी नई दवा सीडी जो आई है। कुछ भी डालें और ले जाएं और जितनी मर्जी आम करें, इस तस्के नफ्स है। इसमें काफी ज्यादा नफ्स पे बात की थी, अगर ये वही लेक्चर है जो यूएसए में हुआ था तो खुद सुने। हमें खुद नहीं पता चलता, अपने नफ्स को आप जितना मोटा करेंगे ये मोटा होगा। हमारे वालिद कहते थे तीन चीजें बंदा जितनी मर्जी बढ़ा ले और जितनी मर्जी कम कर ले, नींद, आप सो के तो देखें, आप सोते रहे सोते रहे सोते ही रहेंगे फिर तो अल्लाह ही उठाए तो आप उठेंगे, भूख थोड़ा खाएंगे आपका स्टमक इतना थोड़े पे सेट होगा कि पेट खत्म, और आप माशाल्लाह तोंद बढ़ाते थे डाइनिंग टेबल पे बैठ के, वो भी बढ़ती रहती है, डाइनिंग टेबल के करीब जाती रहती है, बढ़ती है ना। ये तो मानते हैं ना कि इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी, आप देखिए मेरा वजन नहीं बढ़ता जाता, आप जितना मर्जी बढ़ा ले, बात बढ़ा ले, दिल के गुस्से बढ़ा ले, ग्रजेस बढ़ा ले, मोहब्बत जितनी मर्जी बढ़ा ले, तो ये जो बढ़ना होता है ना ये पसंदीदा नहीं। और आप कहते हैं कि शैतान को हमारे ऊपर कब्जा कब मिलता है? पहला शैतान का हमला आदम और हवा पे कब हुआ? आप पढ़ेंगे 8वें पारे में इंशाल्लाह सूरत अल अराफ में, ख्वाहिश के रास्ते। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिले? मुफस्सरीन कहते हैं कि आदम और हवा पे डायरेक्ट जाके हमला नहीं किया शैतान ने, पहले उनको ख्वाहिश दिलाई लंबी उम्र की, फरिश्ते बनोगे, लॉन्ग लाइफ, देखो ये फल कितना मजे का, दिस एंड दैट, ये सारा करके जो ही ख्वाहिश आती है शैतान का काबू आपके ऊपर और आपका कंट्रोल होता है लूज। आज जैसे आप देखिए कोई गाड़ी चला रहे हैं ना ड्राइवर, आप कोई एकदम उसके ऐसे स्टेयरिंग नहीं ले सकता, पहले उसको कोई गन पॉइंट पे रखेगा, कुछ स्केर्ड करेगा और एकदम थ्रेट करके उसके हाथ से गाड़ी का स्टेयरिंग ले लेगा। बिल्कुल इसी तरह से ख्वाहिश शरीयत के मुकाबले में दौड़ती है। जितना आप अपने आप को नमाज रोजे दीन पे और अल्लाह की मर्जी पे जमाना चाहते हैं, अपनी मर्जी तोड़ें। हजरत आयशा की एक बात याद आ गई, वो कहती थी, अब मैं जुमला बोलती हूँ तोड़ के ताकि आप उसको लिख सकें और समझ सकें, जो चाहो खाओ, जो चाहा खा लिया, ये भी इसराफ है, ये ज्यादती है। बात पूरी हो गई है? हम बैठे होते एकदम दिमाग में आते पकौड़े खाते हैं, फट जाते हैं, बेसन घोलते हैं, टेक 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 पकौड़े बना लिए, ये है झुकना ख्वाहिशों की तरफ। कभी कभी अपनी ख्वाहिशों को मारा करें, सामने अच्छी फ्रेश चीज पकी पड़ी है, दिल भी चाह रहा है, नहीं पहले वो पुरानी खाऊंगी जो कोई नहीं खा रहा। अपने नफ्स को काबू में रखें, और अपने बच्चों को भी आपने अगर बड़ा बंदा बनाना है ना तो उनको भी ख्वाहिश नफ्स पे काबू सिखाए। अमूमन क्या होता है, सबसे अच्छी चीज घर में बच्चों के लिए आती है, और बूढ़े माँ बाप या जो भी है वो बेचारे वो बचा खुचा खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो खाना है, बच्चों के लिए तो बड़े नखरे हैं। तो ये सारी चीजें अल्लाह सिखा के, मैं आखिरी आयत में कहते हैं मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ानकुम, अल्लाह ताला तो चाहता है कि तुमसे बोझ को हल्का कर दे। ये कौन से बोझ है जो तुमने खुद अपने कंधों पर डाले हुए हैं? रस्म और रिवाज के बोझ, दुनियादारियों के बोझ, फसाद, जिना, बेहयाइयों के बोझ, झगड़े, बदगुमानियां, अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे इंसानों के साथ भी ताल्लुक बड़े खूबसूरत हों और मेरे साथ भी, क्योंकि उसको पता है कि वह खुली कल इंसान उदयीफा, और इंसान बड़ा कमजोर पैदा किया गया है। इंसान बहुत कमजोर है। कैसी कमजोरी है उसमें? फिजिकली भी कमजोर है, थोड़ा सा चले तो थक जाता है, खा खा के भी थक ही जाता है बंदा, बोल बोल के भी थक जाता है, और आप सुन सुन के थक जाते होंगे। लेकिन इंसान की हर हिस्स में कमजोरी है। मतलब आप देखिए कि हम देखते हैं, कहाँ तक देख सकते हैं, जाके मुकाबला कर लेते हैं खुले मैदान में, कहाँ तक निगाह जाती है, हदे निगाह जिसको आप कहते हैं। किसी को दूर कोई दरख्त दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा। आप कहते हैं मैं सुन सकती हूँ, कितना सुन सकती हूँ, एक खास लिमिट है, फिर खत्म। आप बोलिए, आप कुछ भी कहें, हर सलाहियत इंसान की कमजोर है। लेकिन एक कमजोरी तो बहुत ही कमजोरी है, और वो क्या है? नफ्स की कमजोरी। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी रूह फेंकी थी, सूरत अल अराफ में इंशाल्लाह डिटेल्स आएंगी। इस रूह की वजह से मैं और आप चल फिर रहे हैं, वरना जिस्म जो मादा का वजूद है, जो ये जो हम खा पी के जिस्म को मोटा कर रहे होते हैं ना, ये जितना मोटा होता है उतना वीक होता है, ये तो आप भी मानते हैं ना। जितना मोटापा आएगा उतनी सुस्ती आएगी, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल आपको हो जाएगा। ख्वाहिशों के पीछे लगकर इंसान का नफ्स कमजोर हो जाता है। आप कभी तो सोचते होंगे ना कि मैं इतनी बेइज्जती करती हूँ सुबह उठ के इसकी रोज नमाज के लिए, ये क्यों नहीं उठता बच्चा, सोचता है ना बंदा। इसलिए कि ये मसला हुआ है कि वो वीक हो गया। इसकी इसी में इंशाल्लाह आप मिसाल सुनेंगे, मुझे लगता है इस लेक्चर के अंदर वो दो घोड़ों की मिसाल दी थी, एक सफेद और एक काला घोड़ा। एक उड़ना चाहता है और एक जमीन में धंसना चाहता है। नफ्स कहता है जमीन में धंसो, खाओ ईट ड्रिंक बी मैरी, और स्पिरिचुअलिटी क्या चाहती? ऊपर उड़ो। ना हम ऊपर उड़ने के लिए बने, ना हम फरिश्ते हैं, ना हम जमीन में दर्द धंसेंगे अखलदा इलर्थ। हम सबको तो सीधा जाना है। स्पिरिचुअलिटी को भी इतना ना ऊपर कर दो कि ह्यूमन की बजाय तुम लोगों को फरिश्ते ही दिखो, सिन प्रूफ और ख्वाहिश प्रूफ लोग। आज हमारे यहाँ ये भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसको जितना दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जत से दूर देखेंगे कहेंगे बहुत नेक है, बहुत तकवा महसूस होता है मैं उन लोगों में जो जाहरी तौर पे एक बहुत बड़ा हमारे सामने गेटअप बन जाते हैं। लंबी दाढ़ी है उनकी, वो तो माशाल्लाह बुजुर्ग है, वो तो खाते ही नहीं, वो तो सोते ही नहीं, कहते माशाल्लाह बड़े नेक होंगे। कोई पता नहीं वो नमाज भी शायद लेट करके पढ़ते हो, किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है आपका, ना आपको मेरा पता है। इसी तरह किसी को नफ्स की चीजें जो जायज हद की है उसको भी देख के कहते हैं ये तो बड़ा नफ्स परस्त होगा, देखो ये तो दुनिया के इतने इसके काम अच्छे अच्छे हैं, तो फिर दीन का इसके अंदर क्या होगा? ये कोई मियार नहीं है। एक ऊपर वाला यहूद ने अपनाया था, दूसरा नसारा ने अपना लिया। इस्लाम कहते बीच में रहो, यू आर ह्यूमन। किसको अच्छे खाने की ख्वाहिश नहीं है? आप किसी दीनदार को अच्छी जगह खाना खाते देखे, आपके ये तो मुत्तकीन, इनका तो तकवा ही गिर गया, ये इतना अच्छा खाना खा रहे थे, ये कोई मियार नहीं है। किसी को अच्छा कपड़ा पहना देख ले, आप कहेंगे तकवा ही नहीं है। है ही नहीं तकवा ही नहीं, कपड़े इतने अच्छे पहनते मुत्तकी कहाँ से हो गए? हालांकि कई एक हदीस में आपको तारीफ नहीं किसी जगह मिलेगी कि अच्छे कपड़े पहनना या ना पहनना उसका तकवा से कोई ताल्लुक है। हाँ खैरु ज़ाद तकवा, ये देख लो कि तकवा कितने अंदर। तो लिहाजा ये रहबानियत और दुनिया से दूरी को किसी का मियार ना समझें। इसी से आज बहुत सारे मजाहब भटके, और इस एक आयत पे मैंने पिछले साल बहुत ज्यादा डेप्थ में बात की थी। आज मेरा इसलिए नहीं दिल कर रहा कि ज्यादा बातें इसी मौजूद से थी जो आप इस सीडी में सुन लेंगे, बल्कि अगर चाहें तो ये लेक्चर डाल दीजिए वेबसाइट पे इसी सबक के साथ, जो सुनना चाहे अलग से बाद में भी सुन ले। तो ये था हमारा आज का सबक। मुझे सारा सबक पढ़ाने और पढ़ने के बाद यही ख्याल आया कि अल्लाह इज द वेल विशर, अल्लाह लव्स अस, बोझ नहीं डालता जैसे कोई माँ नहीं डालती। कभी आपने किसी माँ को देखा कि बच्चे से कह के 20 किलो का कनस्तर उठा के लाओ घी का? ज्यादा से ज्यादा माँ लाड करेगी ना तो कहेगी वो प्लास्टिक का डब्बा उठा लो, जाओ मेरा बेटा पिलो लेके आओ, दैट्स इट। जब आप माँ होने के नाते अपने बच्चे पे इससे ज्यादा बोझ नहीं डालती, तो क्या वो रब आप पे वो बोझ डालेगा जिसको आप संभाल नहीं सकते? इसीलिए कहा कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह अपने बंदे पर उसकी वुसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये वो शरीयत है जो सरासर कैपेबल है, यू कैन डू इट। आज भी आप रह सकते हैं इसी पाबंदियों के अंदर, आज भी ये लिविंग टुगेदर के बगैर जीते हैं लोग। लोग कहते हैं हम इसलिए इकट्ठे रहते हैं कि बाद में अच्छे ताल्लुकात हो जाएं। ताल्लुकात तो 4 साल भी रह लेंगे, लेकिन शादी के बाद 4 महीने भी नहीं साथ रहेंगे, क्योंकि वो मंगेतर था, ये शौहर है, फर्क है। आप देखिए कि हमारी डिमांड बदलती नहीं वक्त के साथ। अक्सर मैंने देखा है कि वही चीजें जो हमें अपनी बेटियों के लिए अच्छी लग रही होती हैं, बहुओं के लिए वो अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं ना कि एक औरत थी तो उसके बेटे की भी शादी हुई और बेटी की भी शादी हो गई इकट्ठी। कुछ अरसे के बाद उसकी दोस्त मिली तो कहने लगी, सुनाओ कैसे घर बस रहे हैं, बेटी का घर कैसा है। कहने लगी, माँ माशाल्लाह बड़ी खुश है मेरी बेटी। भाई कैसे खुश है? कहती, बहुत अच्छा दामाद मिला क्या, शादी के अगले ही महीने लेके उसको अलग हो गया। माशाल्लाह जो कहती है वो करता है, जिधर जाती है ले जाता है, और काम तो उसको करने नहीं देता, और हर दूसरे दिन मुझे मिलवाने भी लाता है। यानी हर खूबी गई, दोस्त कहेंगे माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशकिस्मत, तो अच्छा दामाद मिला। अब सुनाओ बहू बेटे का क्या हाल है। कहती, कुछ ना पूछो मेरे बेटे की तो किस्मत फूट गई। क्या हुआ? शादी के अगले ही महीने मुतालबा कर दिया अलग रहना। अब बाकी बातें आप खुद ही समझ गए, तो फर्क तो ये है ना। अल्लाह अकबर। देखिए एक आंख में भेंगापन कब आता है, कि एक आंख को कुछ दिखता है दूसरी को कुछ दिखता है। आप अपनी जिंदगी का ये भेंगापन खत्म कर दें, इंसानों के साथ ताल्लुकात को। एक ही औरत है, उसको बेटी कहती है ये दुनिया की बेहतरीन औरत है, बहू कहती है कि ये नाकाबले बर्दाश्त औरत है। मैं अक्सर इस बात पे सोचती हूँ, एक शख्सियत को दो रूप क्यों है, बहू कुछ कहे तो बेटी उसको कुछ कहे। मैके वाले उसको लाडली कहते हैं और ससुराल वाले उसको अक्खड़ मिजाज बदबूकार कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को उस चीज पे नहीं रख रहे होते जिस पे रखने की जरूरत होती है। तो बहरहाल सीधे चलते जाएंगे तो ज्यादा देर चलेंगे, लेकिन सबक इतना ही था। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.